आरवी और सावित्री जी किडनैप हो चुकी थी। आरवी ने शान को कॉल भी किया, लेकिन शान उस वक्त मीटिंग में बिजी था। फोन साइलेंट पर होने की वजह से उसको आरवी के फोन आने का पता ही नहीं चला। जब वो मीटिंग हॉल से बाहर निकला, तब जाकर उसने अपना फोन देखा तो कुछ हैरान हो गया। उसने तुरंत उसे कॉल बैक किया, पर आरवी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शान ने घर पर फोन किया तो वहां भी किसी ने फोन नहीं उठाया। शान की भौहें तन गई, उसने तुरंत ही लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ा दिए। कार तेजी से घर की तरफ दौड़ गई। शान लगातार कभी आरवी तो कभी घर पर फोन लगा रहा था। दोपहर का वक्त था तो सड़क पर ट्रैफिक भी था। शान जिस रोड से जा रहा था वहां गाड़ियों की भीड़ जमा थी। गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उसने उतरकर देखा तो कुछ आगे पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ी खड़ी थी। शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया था। शान ने गाड़ी वापस घुमा ली और दूसरे रास्ते से घर जाने लगा। लगातार फोन करने पर भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो गुस्से में फोन डैशबोर्ड पर दे मारा और इसके साथ ही फोन एकाएक बज उठा। शान ने तुरंत कार रोकी और फोन उठाकर देखा तो कोई अननोन नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। उसने कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव किया। हेलो, कौन? उसके सवाल पर दूसरे तरफ से मर्दाना आवाज आई। वो भी पता चल जाएगा, पर अभी के लिए बस इतना जान ले कि तेरी जान मेरी मुट्ठी में कैद है। उसके बाद सुनकर शान, जो पहले से ही काफी तनाव में था, वो एकदम से भड़क उठा। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, हकीकत है। तेरी जिंदगी के दो अहम इंसान इस वक्त मेरे पास है। अगर उन्हें जिंदा देखना चाहता है तो जो एड्रेस भेजूं उस पर एक घंटे के अंदर पहुंच जाना। याद रहे, अकेले आना है। गलती से भी पुलिस को इन्फॉर्म करके भी भूल मत करना, वरना अपनी इस भूल की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी तुझे। इंतजार करूंगा तेरा। अगर देर की या ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसके आधे घंटे के अंदर दोनों की लाश तेरे घर के बाहर पड़ी मिलेगी। इस धमकी के साथ फोन कट गया और एक मैसेज आया। शान ने दोबारा फोन करना चाहा पर नंबर बंद आ रहा था। शान का माथा ठनका। उसने तुरंत घर पर फोन लगाया और गनीमत थी कि इस बार छाया ने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, कहाँ थी तुम और बाकी सब कहाँ हैं? इतनी देर से मैं फोन कर रहा हूँ, उठाया नहीं जा रहा था? शान तो एकदम से उस पर चीख पड़ा, जिससे बेचारी छाया घबरा गई और सहमी हुई सी बोली, सॉरी भैया, वो सब आराम कर रहे थे इसलिए पता नहीं चला। शान ने अपनी आंखें भींच ली और थोड़ा संयमित लहजे में बोला, सब घर पर है? डैड कहाँ है? आरवी कहाँ है? अंशु स्कूल से आ गई? अपनी जिंदगी में सबसे अहम तीनों इंसानों के बारे में उसने सवाल किया। छाया ने तुरंत ही जवाब दिया, अंकल तो बड़े पापा के साथ गए हैं। अंशु बेबी की अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ तो वो स्कूल में होगी, और आरवी भाभी अंकल का रूम साफ कर रही थी। बात करवाओ मेरी अभी उससे। जी भैया, अभी करवाती हूँ। छाया तुरंत सुभाष जी के रूम की तरफ भाग गई। उसने अंदर जाकर देखा तो आधी सफाई हुई थी और काफी हद तक रूम बिखरा हुआ था। छाया ने रूम में, फिर आरवी के रूम में, और उसके बाद हर जगह आरवी को ढूंढा, पर उसको वो कहीं नहीं मिली। तो शान ने फोन काट दिया। उसने तुरंत सुभाष जी को फोन किया, जिसे उन्होंने एक ही बार में उठा लिया। फोन उठाते ही शान ने बेचैनी से सवाल किया, हेलो डैड, आप ठीक है ना? इस वक्त कहाँ हैं आप? हम ठीक हैं बेटा, और भाई साहब के साथ हैं। पर आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? सुभाष जी को शान का रिएक्शन कुछ ठीक नहीं लगा। वो सही सलामत हैं ये जानकर शान की जान में जान आई और उसने खुद को संभालते हुए आराम से जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ डैड, अभी जरा बिजी हूँ तो आपको कुछ देर बाद फोन करता हूँ। शान ने उन्हें जवाब देने का भी मौका नहीं दिया और फोन काट दिया। अगला फोन उसने अंशु के क्लास टीचर को किया, और जब अंशु के ठीक होने की खबर उसे मिली तब कहीं जाकर उसको कुछ सुकून मिला, पर अब भी उसके दिमाग में फोन वाले आदमी की बात गूंज रही थी। माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। आरवी का यूं गायब होना उसके मन में भय पैदा कर रहा था। उसने तुरंत कार घुमाई और कुछ ही देर में कार ठाकुर निवास के अंदर जाकर रुकी। शान ने कार रुकने का भी इंतजार नहीं किया और तुरंत निकलकर चीखते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। अमरजीत ठाकुर, अमरजीत जी अंदर ही थे। वो शान के गुस्से भरी आवाज सुनकर तुरंत कमरे से बाहर निकले। ऊपर से अर्जुन भी बाहर आ गया और शान को वहां देखकर चौंकते हुए तुरंत नीचे आने लगा। शान गुस्से में अमरजीत जी था कॉलर पकड़ लिया, कहा है आरवी? शान का सवाल सुनकर अमरजीत जी के साथ साथ अर्जुन भी चौंक गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर शान से अमरजीत जी को छुड़ाया। शान गुस्से से लाल धधकती आंखों से उसको घूरते हुए चीख पड़ा, कहा है आरवी? अब कौन सी घटिया चाल चली है तुमने? दुश्मनी मुझसे है ना, तो सामने खड़ा हूं मैं, जो करना है मुझे करो, पर अगर मेरे परिवार में से किसी को एक खरूच भी आई तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। अमरजीत जी शौक से उसको देखे जा रहे थे और गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। शान की बात सुनकर अर्जुन ने हैरानी से कहा, शान ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कहा है आरवी? तुम इतने गुस्से में यहाँ क्यों आए हो? मुझसे क्या पूछते हो, अपने बाप से पूछो, जो मुझसे दुश्मनी निभाने में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी ही बेटी को मोहरा बना रहे हैं। शान की गुस्से भरी निगाहें अब भी अमरजीत जी पर टिकी थी। अब वो कुछ सामान्य हो चुके थे। शान की बात सुनकर उन्होंने तुरंत ही कहा, हमने कभी आपसे दुश्मनी नहीं निभाई शान, और ना ही अपनी बेटी को आपके और हमारे बीच लाए हैं। उनकी बात सुनकर शान के लबों पर व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई। अच्छा, तो आए दिन मुझ पर जो जानलेवा हमले होते हो तो वो मुझ पर प्यार दिखाने के लिए करवाते हैं आप? हमने कभी आप पर कोई जानलेवा हमला नहीं करवाया। आप माने या ना माने, पर हम कभी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं कर सकते। अमरजीत जी अपनी सफाई में आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही शान गुस्से में चीखा, आपका ये नाटक देखने नहीं आया हूं मैं, ये बताने आया हूं कि अब भी समय है, जो भी करना चाहते हैं उससे पीछे हट जाइए और दूर रहिए मेरे परिवार से, क्योंकि अगर इन सब के पीछे आप हुए और अगर आपके वजह से मेरे परिवार में किसी को एक खरोच भी आई तो मैं भूल जाऊंगा कि आपने कभी मुझे पिता का प्यार भी दिया था और इस खेल का अंत करूंगा आपकी मौत के साथ। शान गुस्से भरी धमकी देकर वहां से निकल गया। जाते हुए उसके चेहरे के भाव कुछ गंभीर हो गए। पहली बार अमरजीत जी को देखकर उसको ऐसा लगा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, मतलब शायद वो नहीं कोई और है जिसने उसे धमकी दी, और यही वजह थी कि शान बस धमकी देकर बाहर आ गया। वरना अगर उसको जरा भी शक होता कि इन सबके पीछे अमरजीत जी हैं तो आज यहाँ मृत्यु का तांडव होना तय था। फिलहाल उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था कि अगर अमरजीत जी नहीं तो उसका और कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया और उसके किन दो अपनों की जान पर खतरा है। एक तो शायद आरवी है पर दूसरा कौन है ये वो समझ नहीं पा रहा था। पर फिलहाल वक्त नहीं था उसके पास बर्बाद करने को। जितने सवाल थे उनके जवाब अब वहां जाकर ही मिल सकते थे। शान जल्दी से कार में बैठा। उसने तुरंत कार्तिक को कुछ मैसेज किया और खुद कार उस एड्रेस की तरफ दौड़ा दी जो मैसेज में आया था। करीब पौने घंटे बाद कार आउटर मुंबई एरिया में बनी एक बिल्डिंग के बाहर रुकी जो जर्जर हालत में थी। शायद काम अधूरे में छूटा था इसलिए दो फ्लोर ही बने थे और दूसरा भी अधूरा ही था। जैसे ही कार वहां, उसके साथ ही तरफ से दो और गाड़ियां यहां आकर रुकी, जिसे देखकर शान चौंकने के साथ साथ कुछ अलर्ट भी हो गया।
सामने की गाड़ी का दरवाजा खुला और पहले से बदहवास से अमरजीत जी तो दूसरे से सुभाष जी बाहर आए और उनका चेहरा भी काफी घबराया हुआ लग रहा था। उन दोनों को वहां देखकर जितना हैरान परेशान शान था उतने ही हैरान वो दोनों थे शान को देखकर। शान अब कुछ गलत समझता उससे पहले ही अमरजीत जी ने तुरंत ही उसके तरफ बढ़ते हुए कहा, हमें गलत मत समझिएगा शान, आपके घर से निकलने के कुछ सेकंड बाद ही हमें अनजान नंबर से फ़ोन आया और आरवी की जान की धमकी देकर हमें यहाँ बुलाया गया। आप भी आरवी को लेकर परेशान थे इसलिए हमें चिंता होने लगी और हम जल्दी से यहाँ आने के लिए निकल गए। शान ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। उसने बेरुखी से अपनी नज़रें फेर ली और पीछे खड़े सुभाष जी को देख कर बोला, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके फ़ोन के बाद हमें किसी का फ़ोन आया और हमें कहा गया कि अगर अपनी बहू और बीवी की जान बचाना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचे। आप भी फ़ोन पर परेशान थे और सालों बाद आपकी माँ की कोई खबर मिली थी इसलिए हम खुद को रोक नहीं सके और जल्दी से यहाँ आने के लिए निकल गए। उनकी बात सुनकर शान को अपने एक सवाल का जवाब मिल गया था। पहली इंसान आरवी है और दूसरी उसकी माँ जिन्हें उसने सालों से नहीं देखा और सालों की नाराज़गी शायद नफ़रत में बदल चुकी है इसलिए उनके यहाँ होने की बात से उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। सुभाष जी का उनके लिए यहाँ आना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने नाराज़गी से कहा, जो औरत सालों पहले आपको धोखा देकर छोड़कर भाग गई उसके लिए आप अपनी जान खतरे में डालने आ गए डैड। सावित्री हमें कभी धोखा नहीं दे सकती, अगर वो जिंदा है तो हम उनसे मिलकर सारी गलतफहमी दूर कर देंगे और उनके अलावा आरवी की जान भी खतरे में है इसलिए यहाँ सवाल जवाब करके वक्त बर्बाद मत कीजिए और जल्दी से अंदर चलिए। आरवी का ख्याल आते ही शान ने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए पर अभी वो कुछ आगे ही बढ़े ही थे कि काले कपड़े पहने आदमियों ने आकर तीनों को घेर लिया। उनके देखकर शान चौंकना हो गया पर वो कुछ करता उससे पहले ही सबसे आगे वाले आदमी ने फ़ोन उसके तरफ बढ़ा दिया। शान की भौं सिकुड़ गई। उसने अपनी चील सी तेज़ निगाहें आसपास घुमाते हुए फ़ोन लेकर कान पर लगा दिया। हेलो, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, अब जब यहाँ तक आ ही गए हो तो जैसा मेरे आदमी करें उन्हें करने दो, याद रहे तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में कैद है तो कोई चालाकी मत करना। इसके साथ ही फ़ोन कट गया और एक आदमी ने आकर शान के हाथ बांध दिए। अमरजीत जी और सुभाष जी के भी हाथ बांध दिए गए और उन तीनों को लेकर वो आदमी बेसमेंट में पहुंचे जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक ही एक जगह लाइट जली और कुर्सी पर बेहोशी की हालत में बंधी आरवी और सावित्री जी पर दोनों की नज़र पड़ी। आरवी के माथे पर खून का थक्का जम चुका था, चेहरे पर कई निशान थे जैसे किसी ने उसको मारा हो। टू बी कंटिन्यूड।